यूएन रेडियो से आप सुन रहे हैं साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 18 सितंबर 2020 के इस बुलेटिन की सुर्खियां। यूएन महासभा का 75वां सत्र शुरू। कोविड 19 महामारी का मुकाबला करने में बहुपक्षवाद को मजबूत करने का आह्वान। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर महासचिव ने की समानतापूर्ण, न्यायपूर्ण व टिकाऊ दुनिया बनाने की पुकार। कोविड महामारी की वजह से 15 करोड़ अतिरिक्त बच्चे बहुआयामी गरीबी के गर्त में। महामारी के कारण करोड़ों लोगों के आधुनिक दास्ता के चंगुल में फंसने का खतरा। और कोविड अपडेट के साथ साथ कुछ अन्य समाचार भी। हम आपको याद दिलाते चलें कि विश्व परिप्रेक्ष्य वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर अवश्य आएं। पता है news.un.org/hi। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां सत्र मंगलवार 15 सितंबर को शुरू हो गया है, जिसमें विश्व के सामने मौजूद कोविड महामारी के अभूतपूर्व चुनौती के मद्देनजर कुछ देर का मौन रखा गया। इस अवसर पर महासभा के नए अध्यक्ष वोल्कान बोजकिन ने कहा कि कोरोना वायरस ने हमें यह समझने पर मजबूर कर दिया है कि हमारी सामूहिक चुनौतियों का सामना करने के लिए बहुपक्षवाद कितना आवश्यक है। नए महासभा अध्यक्ष ने न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय के आलिशान सभागार में सामाजिक दूरी का पालन करते प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिन परिस्थितियों में हम काम कर रहे हैं वो हमें बहुपक्षीय प्रणाली की जरूरत याद दिलाती है। आमने सामने बैठकर चर्चा करने को महत्वपूर्ण मानते हुए उन्होंने कहा कि उनके लिए इस सत्र की मेजबानी करना बहुत बड़ा सम्मान है और जब तक स्वास्थ्य इसकी अनुमति दे हम आमने सामने की बैठकें यथासंभव आयोजित करने की कोशिश करेंगे। महासभा अध्यक्ष वोल्कान बोजकिन ने इससे पहले इस पद पर चुने जाने के बाद यूएन न्यूज़ के साथ एक खास बातचीत में कोविड 19 महामारी के खिलाफ एकजुटता का आह्वान किया।
The whole humanity is in this fight together. It is, I think, time for unity. Member states have never had a more compelling reason.
नए महासभा अध्यक्ष कह रहे थे कि इस लड़ाई में पूरी मानवता एक साथ है। ये एकता दिखाने का समय है। सदस्य देशों के पास जन कल्याण की खातिर एकजुट होकर काम करने के लिए इससे बेहतर और कोई वजह नहीं हो सकती। मैं विश्वस्त हूं कि हम एक साथ मिलकर इस संकट से और ज्यादा मजबूत होकर उभरेंगे। महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष वोल्कान बोजकिन ने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ एक अनूठा अवसर है पीछे मुड़कर अपनी उपलब्धियों पर एक बार फिर नजर डालने का और उनसे सबक लेकर वर्तमान में बहुपक्षवाद और इस विश्व संगठन के सामने दरपेश चुनौतियों से निपटने का। महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने नए महासभा अध्यक्ष वोल्कान बोजकिन को गर्मजोशी के साथ बधाई दी और उन्हें अपने पूर्ण समर्थन व सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि ये वर्ष हमारे संगठन के वजूद के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। हमें स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने और उपचार व टीकों के विकास और समान वितरण का समर्थन करके कोविड 19 महामारी के तत्काल प्रभाव से निपटने के प्रयास जारी रखने होंगे। 74वें सत्र की अध्यक्षता करने वाले निवर्तमान महासभा अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बांडे ने 2020 में दिवंगत हुए पूर्व महासचिव जेवियर पेरेस डी कुइया और बुरांश के राष्ट्रपति पियरे नरकन्जीजा को श्रद्धांजलि अर्पित करके अपने असाधारण कार्यकाल का समापन किया। उन्होंने अभूतपूर्व समर्थन के लिए महासचिव और उप महासचिव सहित सचिवालय के कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने यूएन न्यूज़ के साथ एक खास बातचीत में कोविड 19 के प्रसार पर चिंता जताई है और महामारी के बाद बेहतर पुनर्निर्माण, सतत पुनर्बहाली, समानता व बहुपक्षवाद बढ़ाने पर जोर दिया है। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ और महासभा के 75वें सत्र के मौके पर दिए इस इंटरव्यू में महासचिव ने एक समान, न्यायपूर्ण व टिकाऊ दुनिया के निर्माण का आह्वान किया है। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
यूएन महासचिव ने कोविड 19 पर चिंता जताते हुए कहा कि इस महामारी ने दुनिया की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति से निपटना हर किसी के लिए जरूरी है, इसलिए इस लड़ाई में एकता और एकजुटता दिखाई जानी होगी।
इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल दैट अ वैक्सीन बी कंसीडर्ड अ ग्लोबल पब्लिक गुड, अ पीपल्स वैक्सीन।
महासचिव एंटोनियो गुटेरेश कह रहे थे कि ये नितांत आवश्यक है कि कोविड 19 के टीके को वैश्विक सार्वजनिक कल्याण के लिए आम जन का टीका माना जाए। हम उन देशों के प्रतिस्पर्धा से बचें जो अपने लिए अधिक से अधिक वैक्सीन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और उन लोगों को नजरअंदाज कर रहे हैं जिनके पास संसाधनों की कमी है। जलवायु परिवर्तन के विषय पर यूएन प्रमुख ने आगाह किया कि सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना होगा। इसके लिए वर्ष 2050 तक नेट कार्बन उत्सर्जन शून्य करना जरूरी है। साथ ही जीवाश्म ईंधन के लिए सब्सिडी देने में करदाताओं का धन खर्च करना बंद करना होगा और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करना होगा। यूएन महासचिव ने ध्यान दिलाया कि कोविड-19 से निपटने के लिए और अर्थव्यवस्थाओं की पुनर्बहाली के लिए खरबों डॉलर की रकम खर्च करनी होगी, इसलिए वित्तीय संसाधनों को टिकाऊ विकास लक्ष्यों के अनुरूप उपयोग में लाना अहम होगा। लैंगिक समानता की दिशा में प्रयासों को उन्होंने एक बेहतर दुनिया के लिए जरूरी बताया।
Man must understand that it is in the interest of everybody, not only of women, to have gender equality and gender parity, because the world will be better.
महासचिव गुटेरेश कह रहे थे कि पुरुषों को समझना चाहिए कि लैंगिक समानता न केवल महिलाओं के बल्कि हर किसी के हित में है, क्योंकि इससे दुनिया बेहतर होगी। महासभा के 75वें सत्र से पहले अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए उन्होंने कहा,
Let's make sure that we have a global ceasefire. Let's make sure that we'll have a vaccine that is a global public good, a people's vaccine.
आइए हम वैश्विक युद्ध विराम सुनिश्चित करें। आइए हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे पास जो वैक्सीन होगी वो एक वैश्विक सार्वजनिक कल्याण के लिए हो। साथ ही ये सुनिश्चित करें कि जब हम अपनी अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण करें तो इस तरह करें कि वर्ष 2050 में कार्बन तटस्थता तक पहुंचा जा सके।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने कहा है कि कोविड-19 से निपटा जाना अब भी वैश्विक चुनौतियों के एजेंडे में सर्वोपरि है, जिसके तहत एक असरदार व किफायती वैक्सीन का विकसित होना और सभी के लिए उपलब्ध होना इस लड़ाई का अहम हिस्सा है। यूएन प्रमुख ने महासभा के 75वें सत्र में होने वाले उच्च स्तरीय सप्ताह से पहले एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि कोविड-19 महामारी अब भी नियंत्रण से बाहर है और दुनिया एक बेहद गंभीर दौर का सामना कर रही है। बहुत से लोगों ने अपनी उम्मीदें वैक्सीन पर टिकाई हुई हैं, लेकिन ये स्पष्ट रूप से ध्यान रखना होगा कि किसी महामारी से निपटने की कोई चमत्कारिक या जादुई औषधि नहीं है। महज एक वैक्सीन इस संकट को नहीं सुलझा सकती, अल्पकाल में तो बिल्कुल नहीं। नए और मौजूदा औजार व्यापक स्तर पर बढ़ाने होंगे, जिनके सहारे नए मामलों से निपटा जा सके और संक्रमणों को दबाने व लोगों की जिंदगियां बचाने में महत्वपूर्ण उपचार प्रदान किए जा सकें, विशेषतः अगले 12 महीनों के दौरान। उन्होंने जोर देकर कहा कि वायरस सीमाओं की परवाह नहीं करता, इसलिए वैक्सीन को सार्वजनिक रूप से सभी के लिए लाभकारी उत्पाद के रूप में देखा जाना होगा। कोरोना वायरस से अब तक 2,94,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं और इसके संक्रमण से मृतकों की संख्या भी आने वाले दिनों में 10,00,000 से ज्यादा हो जाने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र के एक नए अध्ययन में पाया गया है कि कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया भर में 15 करोड़ अतिरिक्त बच्चों को बहुआयामी गरीबी के गर्त में धकेल दिया है, जिसके कारण वो शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पोषण, स्वच्छता और जल संसाधनों से वंचित हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ और बच्चों के कल्याण के लिए काम करने वाले एक अलाभकारी संगठन सेव द चिल्ड्रन ने बाल गरीबी पर कोविड-19 के प्रभाव पर एक तकनीकी रिपोर्ट गुरुवार को जारी की है। कुछ और जानकारी सुनिए प्रतिष्ठा जैन से।
इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में गरीबी में रहने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 1,20,00,000,000,000 हो गई है, जिसमें 15% बढ़ोतरी साल 2020 के आरंभ में कोविड-19 महामारी का फैलाव शुरू होने के बाद हुई है। वैसे तो ये विश्लेषण पहले से ही बहुत भीषण तस्वीर पेश करता है, मगर यूनिसेफ ने आगाह करते हुए कहा कि आने वाले कुछ महीनों में स्थिति और भी ज्यादा खराब होने वाली है। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरिएटा फोर ने कहा है कि कोविड-19 और इसकी रोकथाम के लिए लागू किए गए तालाबंदी उपायों ने लाखों बच्चों को और ज्यादा गहरी गरीबी में धकेल दिया है। ऐसे बहुत से परिवार जो गरीबी के दायरे से निकल चुके थे, वो फिर से गरीबी के गर्त में पहुंच गए हैं, जबकि बहुत से अन्य परिवार अब किल्लत और कमी के ऐसे स्तर में जी रहे हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। इस अध्ययन रिपोर्ट में 70 देशों से शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आवास, पोषण, स्वच्छता और जल संसाधनों तक बच्चों की पहुंच से संबंधित आंकड़े एकत्र किए गए हैं। बाल गरीबी केवल वित्तीय मूल्यांकन से कहीं ज्यादा है। वैसे तो किसी परिवार की आमदनी के जरिए गरीबी के वित्तीय पहलू या आयाम को नापना भी महत्वपूर्ण है, मगर ये आकलन गरीबी में रहने वाले बच्चों की तकलीफों का आंशिक परिदृश्य ही पेश करता है। बाल गरीबी के समूचे रूपों व आयामों को समझने के लिए सभी संभावित बहुआयामी किल्लतों व कमियों का सीधे तौर पर विश्लेषण करना होगा। इसमें परिवारों को और ज्यादा गरीबी के गर्त में जाने से रोकने के लिए सामाजिक संरक्षण, समावेशी वित्तीय नीतियां, सामाजिक सेवाओं में निवेश और रोजगार व श्रम बाजार में सकारात्मक बदलाव करने होंगे।
देशों की सरकारों द्वारा समय रहते सहायता के समुचित प्रयास नहीं किए जाने के कारण विश्व भर के लाखों करोड़ लोग कोविड 19 महामारी के कारण दासता व शोषण के समकालीन रूपों के शिकार हो सकते हैं। ये चेतावनी दास्ता के समकालीन रूपों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष रिपोर्टर तोमोया ओबोकाता की ओर से जारी की गई है, जिन्होंने बुधवार को मानवाधिकार परिषद के वर्चुअल सत्र के दौरान अपनी पहली रिपोर्ट पेश की। एक संक्षिप्त रिपोर्ट के साथ अंशु शर्मा।
संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ ओबोकाता ने मानवाधिकार परिषद में शिरकत करने वाले प्रतिनिधियों को बताया कि सुरक्षा के कमजोर ताने बाने और श्रम अधिकारों व सामाजिक संरक्षा नियामकों के ढहने से कुछ देशों में निर्धनतम समुदायों के समक्ष बंधुआ मजदूरी, जबरन मजदूरी और दास्ता के समकालीन रूपों का शिकार होने का जोखिम पैदा हो गया है। विशेष रिपोर्टर तोमोया ओबोकाता ने ध्यान दिलाया कि वैश्विक आर्थिक मंदी से व्यवसायों पर बोझ बढ़ा है, जिसके समाधान के तौर पर श्रम अधिकार कमजोर किए जा रहे हैं, लेकिन इसकी महंगी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि उन व्यवसायों की जवाबदेही तय किए जाने की ज़रूरत है जो महामारी के दौरान दवाएं, चिकित्सा उपकरण और निजी बचाव सामग्री का उत्पादन करने में जुटे निर्बल श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने सभी देशों की सरकारों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास पर धन खर्च करने और ज़रूरतमंद समुदायों की आवाज़ सुने जाने का अनुरोध किया है। विकास के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ साद अल-फरागी ने जिनेवा स्थित मानवाधिकार परिषद को अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपते समय कहा कि महामारी से पहले भी विकास के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी महसूस की जा रही थी, लेकिन मौजूदा संकट ने इस समस्या को और ज़्यादा बढ़ाया है, विशेषतः विकासशील देशों के लिए जिनके बजट पर भार बढ़ा है।
संयुक्त राष्ट्र ने पृथ्वी के चारों तरफ सुरक्षात्मक परत ओजोन को बहाल करने के लिए हुए तमाम वैश्विक समझौतों की कामयाबी को पहचान देने की खातिर बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षा दिवस मनाया है। यूएन महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने इस दिवस के मौके पर दिए संदेश में 1985 में वजूद में आई ओजोन परत सुरक्षा संधि, उस संधि के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और उस प्रोटोकॉल में हुए किगाली संशोधन की सराहना की। उन्होंने कहा कि ओजोन संबंधी संधियां प्रेरणादायक उदाहरण पेश करते हुए स्पष्टता से नजर आती हैं, जहां राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखती है और ये जज्बा भी कि जब हम सभी के हित के लिए कुछ भी मिलजुल कर हासिल करना चाहते हैं तो कोई सीमा या बाधा आड़े नहीं आती। कुछ और जानकारी के साथ सचिन गौड़।
ओजोन परत की संरक्षा के लिए वियना संधि वर्ष 2020 में अपनी 35वीं वर्षगांठ मना रही है। देशों ने 1987 में इस संधि के तहत ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पारित किया, जिसके तहत एरोसोल्स और ठंडा करने वाले उपकरणों में इस्तेमाल होने वाली गैसों को बदलने के प्रति संकल्प व्यक्त किया गया। इन्हीं गैसों के कारण ओजोन परत में छेद हुआ था। अभी तक इन गैसों का लगभग 99% हिस्सा बदल दिया गया है, जिसकी बदौलत ओजोन परत की मरम्मत करने में मदद मिली है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने ध्यान दिलाया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किए गए किगाली संशोधन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ठंडा करने वाली उन गैसों का विकल्प तलाश करने की कोशिश कर रहा है, जिनके कारण जलवायु में व्यवधान की गंभीर चुनौती सामने आई है। उन्होंने कहा कि अगर किगाली संशोधन को पूरी तरह लागू किया जाता है तो वैश्विक तापमान में 0.4 डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है। ओजोन ऑक्सीजन का ही एक रूप है, जिसका रासायनिक फॉर्मूला O3 है। ओजोन परत का ज्यादातर हिस्सा पृथ्वी के हर ओर कुछ ऊंचाई भरे वातावरण में स्थित है। ये पृथ्वी की सतह से 10 से 40 किलोमीटर ऊपर है। इस क्षेत्र को स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है, जिसमें वातावरण में मौजूद ओजोन का लगभग 90% हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 में 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत सुरक्षा दिवस घोषित किया था। वर्ष 2020 में इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम रही जीवन के लिए ओजोन। ये थीम याद दिलाती है कि ओजोन न केवल पृथ्वी पर जीवन की मौजूदगी के लिए अति महत्वपूर्ण है, बल्कि हमें भविष्य की पीढ़ियों की खातिर भी ओजोन की संरक्षा के लिए प्रयास जारी रखने होंगे।
संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP और भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण आजीविका मिशन के बीच हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत बच्चों और गर्भवती महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से टेक होम राशन्स उपलब्ध कराए जाएंगे। टेक होम राशन्स ऐसे ऊर्जावान खाद्य पदार्थ होते हैं जो पोषण सुनिश्चित करने के मकसद से बच्चों और गर्भवती महिलाओं को खिलाए जाते हैं। इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए UN न्यूज़ की अंशु शर्मा ने बातचीत की भारत में विश्व खाद्य कार्यक्रम में पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शरीका यूनुस के साथ।
टेक होम राशन ये जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन ICDS में बनता है और महिलाओं को और छोटे बच्चों को दिया जाता है, तो अगर मैं सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की बात करूँ तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो है 6 महीने से 36 महीने के बच्चों को दिया जाता है, जिसको टेक होम राशन बोलते हैं। फिर 3 से 6 महीने के बाद 3 साल से 6 साल के बच्चों को एक हॉट कुक मील दिया जाता है, और जो महिलाएं धात्री होती हैं या प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं उनको भी टेक होम राशन दिया जाता है। अब तक ये होता था कि उत्तर प्रदेश सरकार टेंडर प्लेस करती थी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन और THR के प्रोक्योरमेंट के लिए, और अलग अलग प्राइवेट कंपनीज इस टेंडर को अप्लाई करती थी, और फिर प्रदेश को 5 से 6 कभी कभी 6 से 7 कंपनियों के बीच में डिवाइड करा जाता था, और हर कंपनी को टैग करा जाता था एक रीजन से जहाँ पे वो टेक होम राशन और सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते थे। अब जो हमने ये अग्रीमेंट साइन करा है उत्तर प्रदेश सरकार के साथ, इसके तहत हम एक डिसेंट्रलाइज्ड मोडालिटी इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। डिसेंट्रलाइज्ड मोडालिटी का मतलब ये हुआ कि हर ब्लॉक के स्तर पर हम एक टेक होम राशन प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करेंगे, और इस यूनिट में जो प्रोडक्शन का काम होगा वो वुमेन्स लेड माइक्रो एंटरप्राइजेस करेंगी, से जेंडर एम्पावरमेंट होगा, लाइवलीहुड क्रिएट होंगे।
तो WFP इसमें तकनीकी सहयोग देगा, इसके क्या मायने हैं और इस योजना को किस तरह से कार्यान्वित किया जाएगा?
WFP को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो 2 जिले उन्नाव और फतेहपुर के 2 ब्लॉक्स में ये यूनिट सेटअप करें, और जो हम यूनिट सेटअप करेंगे वो एक तरह के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन जाएंगे। हम सेटअप करेंगे, उनको थोड़े दिन चला करके दिखाएंगे उत्तर प्रदेश सरकार को, सो दैट इट बिकम्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर देम, और जब वो समझ लेंगे कि इस तरह की यूनिट को सेटअप करने में चलाने में क्या क्या चाहिए होता है, एंड दे वुड हैव लर्न एंड अंडरस्टूड दैट प्रोसेस, देन दे विल स्टार्ट फेजिंग इट अप टू द रिमेनिंग 18 डिस्ट्रिक्ट्स।
डॉक्टर शरीका यूनुस के साथ हुई इस बातचीत का विस्तृत संस्करण हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए मिलने वाले वेतनों में अंतर और गहराई से समाई व्यवस्थागत विषमताओं की ओर ध्यान आकृष्ट करने के प्रयासों के तहत शुक्रवार 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने पहली बार मनाए गए इस दिवस पर अपने संदेश में कहा कि कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए गैर बराबरी का दर्जा जीवन के अन्य क्षेत्रों में विषमता को पनपने का मौका देता है। UN प्रमुख ने कहा कि महिलाओं की नौकरियों में स्वास्थ्य बीमा और सवैतनिक अवकाश जैसे फायदों की संभावना कम होती है। जब महिलाएं पेंशन की हकदार भी होती हैं तब भी कम वेतन रहने के कारण उन्हें वृद्धावस्था में कम पेंशन मिलती है। उन्होंने कहा कि समान वेतन संबंधी कानून इस समस्या को हल करने में नाकाम रहे हैं और इसलिए नए समाधानों के लिए ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। इस समाचार के साथ साथ अन्य खबरें विस्तार से पढ़ने और जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर अवश्य आएं, पता है news.un.org/hi। आप अपने मोबाइल फोन पर हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है UN न्यूज रीडर। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही, अब महबूब खान को इजाजत।